शांति। जब जब भी इस संसार में ऐसा लगा कि परिवर्तन होना चाहिए, जब जब भी इस संसार में परिवर्तन की आवश्यकता हुई, तब तब इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जिन जिन आत्माओं ने, महात्माओं ने अथवा धर्मात्माओं ने इस परिवर्तन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तब तक जो उनका मुख्य आधार था वो क्या था? अपने आप को उस कर्तव्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण कर देना, स्वाहा कर देना, दूसरों के दुखों के लिए, दूसरों के दुख को सुख में परिवर्तन के लिए, दूसरों के शांति के लिए अपने सुख का त्याग कर देना। जैसे सिद्धार्थ ने अपने राजमहल का त्याग किया, जब उन्होंने देखा कि दुख में, संसार में इतने दुख है, अशांति है, लोग मर क्यों रहे हैं, लोग बुजुर्ग क्यों हो जा रहे हैं, ये सब बातें जब उनके अंदर आया, तब उनके अंदर वैराग्य आया, फिर उन्होंने अपने राज्य का, अपने महल का त्याग किया और आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए। ऐसे ही जब हमारे देश को ऐसा लगा कि आजाद होना चाहिए, तब तब हमारे देश के बहुत से वीर जवानों ने, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, झांसी की रानी, ऐसी बहुत सी विभूतियां ने इस देश की आजादी के लिए, इस कर्तव्य को अंजाम देने के लिए अपने जीवन की आहुति दी, अपना सर्वस्व स्वाहा किया, तब जाके इसमें वे सफल हुए। क्योंकि अब जब सारा संसार पांच विकारों के वशभूत है, चारों तरफ संसार की सभी आत्माएं दुख दर्द में हैं, ऐसे समय में परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होकर के ब्रह्मा तन द्वारा एक रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा और इस यज्ञ में सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, अपना धन, अपना मन सब कुछ समर्पण किया। तो आज इसी संदर्भ में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है गरीबों की समर्पणता। जब शिव बाबा परम धाम से इस धरा पर आए तब इस विशाल परिवर्तन के कार्य के लिए जिन आत्माओं का चयन किया, जिन आत्माओं का उन्होंने सिलेक्शन किया, वो किस प्रकार की आत्माएं थी? वो आत्माएं जो आर्थिक रीति से गरीब हो, जिनके जीवन में सुख के वैभवों का, संसाधनों का अभाव हो, अथवा उन आत्माओं का चयन किया जिनके अंदर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, अटूट निश्चय हो, भक्ति भावना वाले हों, तो ऐसे आत्माओं का उन्होंने चयन किया। और इस प्रकार की आत्माएं मेजॉरिटी कौन से देश में मिली? इस भारत देश में। इसलिए उन्होंने सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए भारत देश को चुना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भगवान ने सृष्टि परिवर्तन के इस महान कर्तव्य के लिए गरीब बच्चों को ही क्यों चुना, जबकि इस संसार में एक से बढ़कर एक धनी, अमीर, अरबपति, खरबपति लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने गरीब बच्चों को ही क्यों चुना? आखिर उनके अंदर कौन सी विशेषताएं देखी और उन्हें लगा कि यही जो बच्चे हैं वो इस ज्ञान को उठा सकते हैं और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हमारे मददगार सिद्ध हो सकते हैं? जो जिनके जीवन में वैभव का, सुख का, संसाधनों का अभाव है, जिन्हें दो वक्त की रोटी मिल जाए तो भी वो प्रभु के गुणगान करते रहते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके अंदर सेवा की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया, आकर के उनके चरण स्पर्श किया, उनके सानिध्य में बैठ गया, परंतु उसके चेहरे पर कुछ तनाव था, कुछ परेशानियां महसूस हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब देखा उसको इस स्थिति में तो उन्होंने उसका कारण पूछा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? तब उस व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत समय से ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनकी दुआएं के लिए बहुत सारे मैंने प्रयत्न किए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं रहता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, एकाग्र नहीं होती है, इसलिए मैं दुखी हूं, दिल शिकस्त हूं। उसके इस बात को सुनकर के स्वामी जी ने उसको युक्ति बताई। पहले तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने क्या क्या किया प्राप्ति के लिए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने बोला कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में चारों तरफ से दरवाजों को बंद करके एकांत में ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं साधना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने जो घर के दरवाजे हैं ना, उस दरवाजों को खोलना पड़ेगा, तुम्हें अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाओ, जो आसपास के लोग हैं कोई भी मिले, जो दुखी है, जो अशांत है, जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनकी तुम मदद करो। जो भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाओ। जब तुम्हारे इस कार्य से उन्हें खुशी होगी तो तुम्हें खुशी, तुम्हें आनंद स्वतः ही प्राप्त होगा, और इस खुशी और इस आनंद में तुम्हें स्वयं ही परमात्मा की, उस पिता की दुआएं और ब्लेसिंग की अनुभूति होगी। दूसरा, ये जो गरीब बच्चे होते हैं बाबा के, वो आसपास के जितने भी दुखी है, अशांत है, उनके अंग संग रहते हैं, तो उनके दुख और अशांति के कारण को जानते हैं, उनसे वे, उनके दुख दर्द से वे जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जब तक हमें स्वयं दुख की महसूसता नहीं हो, तब तक हम दूसरे के दुख को कैसे जान सकते हैं। एक बार एक सेठ जी के पास एक नौकर काम करता था। वो नौकर दिन रात उस सेठ जी की सेवा करता था, फिर भी जो सेठ थे उससे प्रसन्न नहीं रहते थे, संतुष्ट नहीं रहते थे। आए दिन उसे कुछ न कुछ सुनाते रहते थे, खरी खोटी सुनाना, डांटना, फटकारना, कभी कभी मुख से अमर्यादित बोल भी निकलते थे। आखिर एक दिन तंग होकर वो नौकर उनके घर छोड़ दिया, घर से भाग गया। दो तीन दिन तक वो वापस नहीं आया। फिर सेठ जी को चिंता होने लगी कि अब इतना सारा कार्य जो घर का है कौन करेगा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर गए। उन्होंने देखा मार्केट के एक चौराहे पर वो खड़ा है। उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा और तीन चार चाटा उसको जड़े और पकड़ करके अपने पास लाए। फिर उन्हें अपना अपना जो भी कार्य देना होता है, हर दिन हमेशा की तरह वो दिए, ये करना है वो करना है, लेकिन पहले से अभी ज्यादा वो ज्यादा सेवाएं देते थे, ज्यादा कार्य देते थे और यातनाएं भी ज्यादा देते थे। लेकिन अब जो वो व्यक्ति था, जो नौकर था, वो बहुत खुशी से, बहुत शांत मन से सारा कार्य करता था, जरा भी रिएक्ट नहीं करता था। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं क्यों, इसका कारण जानते हैं। इससे काम करते हुए उस नौकर को दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति उस सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी मुझे आप क्षमा करना, मैं आपको बिना बताए, बिना आपकी आज्ञा से मैं आपके घर से भाग गया। आज मैं लौट के आया हूं और मैं समझता हूं आप मुझे क्षमा कर देंगे और मुझे फिर से नौकरी पर रख लीजिए। उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत गौर से देखा, बोला कि सेम शकल है, कद काठी भी सेम है। फिर उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि हाँ, ये वास्तव में ये मेरा ही नौकर है। फिर जो अंदर घर में जो काम कर रहा है वो कौन है? उन्होंने उसको आवाज दिया, बुलाया, बोले कि तुम कौन हो? जुड़वा भाई नहीं। वो बोला कि मैं आपका नौकर हूं। बोला नहीं नहीं, नौकर तो मेरा आज आया है, तुम कौन है, सच सच बताओ। तब उसने बताया कि मैं लुकमान हूं, लुकमान हकीम। उन दिनों में लुकमान हकीम जो वैद्य थे, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। जब उनको ये पता पड़ा कि ये तो इतने बड़े व्यक्ति है, वैद्य है, नामी ग्रामी है, मैं इनके साथ क्या क्या नहीं दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। फिर उन्होंने इसका कारण पूछा कि आखिर मैं आपको उस दिन चौराहे पर मारा भी, चार पांच चाटे भी जड़े, आपने कुछ नहीं बोला, और मैं आपको पकड़ के लाया तो भी आप मेरे साथ चुपचाप चले आए, और इतने दिनों तक आप मेरे घर में नौकर की तरह रहे, आखिर इसका कारण क्या था? तब लुकमान जी ने बताया कि मेरे घर में भी दो तीन नौकर है, मैं भी जाने अनजाने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता हूं, उनको मैं कड़वे वचन बोल देता हूं कभी कभी, परंतु उस दिन जब मैं चौराहे पर खड़ा था और आपने आकर मुझे धनाधन दो चार चाटे जड़े, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक नौकर होना, किसी के अधीन होकर के कार्य करना कितना कठिन कार्य होता है। तो एक नौकर के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है, क्या क्या परेशानियां आती है, उसे महसूस करने के लिए मैं आपके घर में नौकर के तरफ के तौर पर कार्य किया। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब तक हम लोगों के दुख और दर्द को से जुड़े नहीं रहते हैं, उनकी हमें महसूसता नहीं होती है, तब तक हम उनको उनके कल्याण के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते। आगे बढ़ते हैं, जो गरीब होते हैं उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होता है, वो इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए वो उससे डिटैच होने के लिए उनका मतलब कि बहुत इजी होता है डिटैच होना, उससे उनको त्याग करना, उससे ज्यादा लिप्त नहीं होते हैं। एक तो उनके अंदर संतुष्टता का भाव भी होता है। अक्सर करके हम आदरणीय दादी जानकी के एक वाक्य को सुना करते थे, वो कौन सा था कि सफेद कपड़ा खीसा खाली और मैं हूं सारे जक्की वाली। जब इन शब्दों को मैं सुनता था, या सभी ने सुना होगा, तो ऐसे अंदर से लगता था अल्प बुद्धि के कारण कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनके पास दो छोटी दीदियां रहती हैं, उनका तो वो पर्स तो उठाती है ना, सारी जरूरतें तो पूरा कर देती है ना, फिर उनके पास रखने की जरूरत ही क्या है, ऐसे मन में विचार आता था। एक भाई अपना अनुभव बता रहा था, दो तीन वर्ष पूर्व की बात है, मधुबन में आदरणीय दादी जानकी जी आए हुए थे और सभी मधुबन निवासियों से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। सभी भाई बहन वहां एकत्रित हुए, दादी जी ने कुछ मतलब योग कराया, क्लास कराया और फिर सभी वहां से धीरे धीरे करके चले गए। लास्ट में लगभग 8-10 भाई बहन वहां रुक गए, ठहरे हुए थे, कि दादी से इतना प्यार था ना, जल्दी जाने का नहीं होता था। तो लास्ट मोमेंट में कोई मधुबन के भाई ने गरम गरम भजिया पकौड़ा बना के लाए, तो दादी जी ने ना उस दिन सभी को अपने पास एक एक को बिठा करके मुख में वो पकौड़े खिलाए। सुशील भाई को याद होगा, तो उस दिन एक बहन जी ने दादी जी को बताया, उनको बोल रहे थे, दादी जी आपकी जो कार है वो पुरानी हो चुकी है, अभी आप नई कार ले लीजिए, ऐसे रमणीकता में दादी जी से चिट चैट कर रहे थे। तो उस दिन दादी जी ने बोला ना 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 ऐसे करके, फिर उन्होंने बताया कि मैं मेरे पास पांच रुपए भी नहीं रखती हूं, और ऐसा कहते हुए उनकी जो दृष्टि थी वो भाई के ऊपर एकाग्र थी। उस समय उस भाई को वो उस दृष्टि का, उस बोल का वो एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मिलन का कार्यक्रम पूरा हुआ, वो मेडिटेशन हॉल से बाहर गया और बाबा के कमरे में गया, बाबा से चिटचैट कर रहा था, तो वो दादी की बातें और दृष्टि बार बार उसकी स्मृति में आ रही थी। सहसा उसे रियलाइज हुआ कि शायद दादी का हमारे लिए इशारा था, कि मैं भी पूरी तरह से बेघर बनूं। शायद ये बाबा का ही इशारा होगा, इसलिए उसने भी निश्चय किया कि अभी मैं भी जितना भी जो भी मेरे पास है थोड़ा बहुत, वो भी मैं पूरी तरह से बाबा के भंडारे में डाल दूंगा, मैं भी बेघर बन जाऊंगा पूरा। ये उसने दृढ़ निश्चय किया। लेकिन इस दृढ़ निश्चय को साकार करने के लिए 2-3 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि अगर मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, थोड़ा भी पैसे नहीं रहेगा, तो कभी जरूरत पड़े छोटी मोटी चीजों का तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। इसी अंतर्द्वंद में उसका 2-3 दिन चला गया। और फिर इसमें वो तब रियलाइज किया कि दादी जी इतनी बड़ी हस्ती ऐसे ही कोई साधारण वाक्य नहीं बोलेंगे कि सफेद रुमाल हाथ खाली। इसके पीछे बहुत ही आत्मा के अंदर ताकत चाहिए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह से कंप्लीट बेगर बनने के लिए। आखिर 2-3 दिन के बाद उसने बाबा की आज्ञा समझ करके ऐसा किया। कंप्लीटली अपने बैग में से एक एक कॉइन जो भी मिले, यहां तक कि 50 पैसे भी कॉइन मिले, जो यहां पर अकाउंट खोल रखा था उसमें थोड़े थे, उसको भी एटीएम से निकाल करके पूरा बाबा को सरेंडर कर दिया। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप सभी को भी ऐसा करना है, जो सेंटर्स पे भाई बहन रहते हैं और जगह रहते हैं तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, कार कुछ लेना देना होता है। लेकिन इसके पीछे का जो भाव है वो ये कि हम अपने पास ऐसी एक्स्ट्रा चीजें न रख लें जिसकी जरूरत नहीं हो, हमारा बुद्धियोग उसमें लगा रहे, उसमें हम फंसे नहीं इन सब चीजों में। क्योंकि जब हम अपना घर, अपना परिवार सब कुछ त्याग करके आते हैं और फिर यहां आकर के एक तो वहां हम दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, फिर बाबा का ज्ञान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुख में चैन में जीने लगते हैं। फिर यहां आकर के बेहद का परिवार है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलने लगती हैं, तो बहुत उसमें हम ऐसा ना हो कि फिर जहां से आरंभ किया था रास्ता त्याग का फिर वहीं पर पहुंच जाए। आगे वो भाई अपना अनुभव बताता है, उसके बाद से कभी भी इसको ऐसा लगा कि किसी भी चीज की जरूरत है, वो संकल्प करते ही कोई ना कोई भाई उसे देख के चला जाता था। अगर समझो कि कोई चीज बहुत जरूरी चीज है, 100 रुपीज की आवश्यकता है, तो उस दिन उसे कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई माता आकर के 500 या 1000 रुपये देके चले जाते थे। फिर वो क्या करता, जितने में उसका काम चलता उतना यूज करता, फिर बाबा को बाकी फिर सरेंडर कर देता, पूरा फिर से खाली हाथ हो जाता, ताकि उसके अंदर वो आसक्ति न बैठ जाए, वो इच्छाएं न बैठ जाए कि किसी से लेने की भावना रहे। आगे देखते हैं, हम जब संगठन में होते हैं, चाहे सेंटर में, चाहे यहां, चाहे विदेशों में, कहां भी भाई बहने, चाहे घरों में भी, इवन जो स्टूडेंट हैं, जब हम संगठन में आते हैं, क्योंकि हम बाबा को पूरी तरह से तन से मन से धन से सरेंडर हो चुके हैं, तो हमारी पालना कौन करता है, स्वयं श्री बाबा करते हैं। हमें वस्त्र कपड़े से लेकर के खाने पीने की चीजें, चाहे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, या कोई भी चीजें, एक पेन भी, कुछ भी बाबा ही देते हैं, किसी न किसी को निमित्त बना करके बाबा देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पैसे हैं, मैं अमीर हूं, तो हम क्या करते हैं कि अगर जो चीज हमें मिली और हमें वो पसंद नहीं आई, थोड़ा कम क्वालिटी का लगा और हमारे पास पैसे पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो उसे लेंगे नहीं, या लेंगे भी तो दूसरे को दे देंगे, अपने योग्य नहीं समझते उसे, और फिर हम अपने पैसे से उस वस्तु का, उस चीज का, उस कोई भी चीज का, चाहे कपड़ा हो चाहे फ्रूट्स हो, लेकर के हम यूज करते हैं। एक तरफ बाबा बोलते हैं कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं ना, इस ज्ञान को वही उठा सकते हैं, साहूकार नहीं। वो कैसे? इसका हम छोटा सा एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं अमीर बन जा रहा हूं और एक कोई भाई जैसे निखिलेश भाई गरीब बन जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दो पेन है, ये हमें बाबा ने किसी को निमित्त बना करके सभी ब्राह्मण वत्सों को गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में दिया। ये निखिलेश भाई की है, ये हमें भी मिली थी, लेकिन चूंकि मैं अमीर हूं, काफी पढ़ा लिखा हूं, ये हमारे पेन में सौंपता नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पेन को तो लिया, हमने किसी और को दे दिया, ये मेरे काम का नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे पैसे से ऐसे अच्छी क्वालिटी की पेन खरीदी, ठीक है। ये ऐसी मैंने पेन ली और अपने आप को संतुष्ट किया। लेकिन अभी ये दो पेन है, इस दोनों पेन में फर्क क्या है? इसके भी पीछे और देखते हैं क्या फर्क क्या है ये दोनों पेन में। क्वालिटी है ये, हाँ, ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसकी गहराई में जाएं, और भी गहराई में, ये जो पेन है इसे स्वयं भगवान ने दिया है हमें, ठीक है। इस पेन के पीछे क्या क्या शक्ति है उसे देखते हैं, जिसे भगवान ने दिया। बिल्कुल साधारण है, ये निखिलेश भाई की पेन है, गरीब भाई की पेन है, ठीक है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये पेन के पीछे क्या क्या शक्ति छुपी है। ये पेन जो है, इसके पीछे ये दर्शाता है कि कितना हमारे अंदर संतुष्टता है, इनके अंदर कितनी संतुष्टता है, इनके अंदर कितना त्याग भाव है, कितना न इनके अंदर इच्छा मात्र में अविद्या की शक्ति है, ये दर्शाती है। इसके पीछे ये सारी शक्तियां हैं, और इसके पीछे क्या है, मैंपन, देहभान को बढ़ाने वाला, सूक्ष्म में अभिमान, इस पेन के अंदर ये है और इस पेन के अंदर ये है, ठीक है। अब इस पेन में चूंकि इसके पीछे ये सारी शक्तियां हमने बताई है, तो इससे ये पेन तो चूंकि दोनों कुछ दिन के बाद नहीं रहेगी, ज्यादा समय नहीं चलेगी, लेकिन इसके पीछे जो हमने संस्कार बनाए वो हमारे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड जाती है और फिर हमारे प्रारब्ध बनाती है, वो उसी अनुसार हमारा भाग्य बनता है, हम श्रेष्ठ बनते हैं, ठीक है। तो बाबा बोलते हैं कि आजकल के जो साहूकार है वो बाद में आगे चल के वो गरीब बनेंगे, और जो आज के जो गरीब है वो आगे चल करके साहूकार बनेंगे। उसका रीजन यही है, क्योंकि इसके पीछे जो उसने शक्तियां अर्जित की, उस शक्तियों के एवज में वो सारा उसे प्राप्त होता है। अब चूंकि मैं अमीर हूं, ठीक है, अब ये क्या है, ये भाग्य की कलम है ना, इसे हम भाग लिखते हैं जो बाबा ने दिया हुआ है। ये भाग्य की कलम ये नहीं रही, ये रही भाग्य कलम। अब ये जो पेन है ये मुझे भी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि भल मैं अमीर हूं, अब हमें रियलाइज हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमें पता नहीं था कि भगवान का प्रेम क्या होता है, भगवान की कोई वस्तु का मोल क्या होता है, उनकी उसके प्रति श्रद्धा क्या होती है। लेकिन चूंकि हमें अब नॉलेज आ गया है, भल में अमीर हूं, इसमें हमारा क्या दोष है, वो तो ड्रामानुसार हमें ड्रामा ने या हमारे कर्मों ने हमें बनाया, लेकिन फिर भी हमें ये पेन चाहिए, अभी इसके लिए क्या करना है। निखिलेश भाई से चेंज कर लें। हम क्या करें, निखिलेश भाई को कॉपी करना होगा हमें। कॉपी करने के लिए भी हमें अटेंशन देना इस बात का कि कभी कभी हम कॉपी करते हैं जो कर्म होता है ना उसके परिणाम को देखकर कॉपी करते हैं। एक कर्म है, एक परिणाम है, उसको देख करके हम कॉपी करते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ दिन पहले हम मुरली सुनते समय हमारे आदरणीय शशि बहन जी ने एक एग्जाम्पल बताया था साकार बाबा के टाइम में, जो रक्षाबंधन से संबंधित था। साकार बाबा को किसी सेंटर की बहन जी ने राखी भेजी रक्षाबंधन, तो बाबा ने उस बहन जी को 2 रुपये मनी ऑर्डर किए और बोला कि इसका आप टोली बनाना और सबको खिला देना। जब अन्य बहनों को, सेंटर की बहनों को जब पता पड़ा कि बाबा ने उनको 2 रुपये भेजा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फटाफट बाबा को राखी भेजी नेक्स्ट ईयर। थैंक यू बताने के लिए। लेकिन बाबा ने उनको मना कर दिया, कहा कि मैं पतित हूं क्या। वो जो बहन, जो दीदी लोग थे, उन्होंने उस बहन का कॉपी किया जिन्होंने पहले भेजा था। लेकिन बाबा ने मना किया, उसके पीछे क्या भाव था, उस उन जो बहनें थी उस बहन से क्या कॉपी करना था, शायद वो बुद्धि में नहीं आया होगा। उन्होंने परिणाम को देखा, भाई बाबा से प्यार किसको नहीं है, शायद बाबा का प्यार मिले। लेकिन बाबा बोलते हैं कि प्यार प्यार को खींचता है। वो जो बहन ने राखी भेजा होगा उसके अंदर कितनी तड़प रही होगी, बाबा के प्रति कितनी भावना रही होगी। जब अंदर परमात्मा का प्यार जब उमड़ता है ना, उस हिसाब से जो हमारे मन में विचार आते स्वतः कि हमें ये करना है, तो बाबा का रिस्पॉन्स जरूर मिलता है। तो उस चीज को, उस भावना को कॉपी करना होता है ना, तब तो हमें बाबा का रिस्पॉन्स मिलेगा, ना कि हम कर्म देखें उसके परिणाम को देखें। जैसे यहां पर कुछ दिन पहले हमारी एक बहन जी ने एक एग्जाम्पल दिया था एक लकड़हारे का, सभी ने हमने कहानी सुनी कि जो पहला लकड़हारा था वो बहुत इनोसेंट था, बहुत भोला था, बहुत ऑनेस्ट था। उसकी जब कुल्हाड़ी नदी में गिरी तो नदी की देवी ने आकर के उसे 3 कुल्हाड़ियां दी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के। लेकिन जो दूसरा जो था लकड़हारा, उसने उसके कर्म को कॉपी किया उसका परिणाम को देख करके। लेकिन और क्या हुआ उसके साथ, जो था उसके पास वो भी गंवा दिया। लेकिन उसे कॉपी क्या करनी चाहिए थी, उसके अंदर क्या ईमानदारी है, कितनी विशेषता है, कितना इनोसेंट है, उसको कॉपी करना चाहिए था, तब तो उसे वो प्राप्तियां होती जो उसे प्राप्त हुआ है। तो हमें भल, हम अमीर हैं, हम भी बाबा के प्यार को, बाबा के उस सानिध्य को, उस प्राप्तियों से, उस प्राप्त को बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अमीर होते हमारे लिए अभिशाप है, नहीं। रामायण में एक सबरी का वृतांत आता है, कहानी आती, कथा आती है कि सबरी राम के प्रेम में कितना आतुर रहती है, कितना भावना रहती है। जब उनके गुरु मातंग ने बताया, मातंग ऋषि ने, कि एक दिन राम तुम्हारे दर पर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तो और ही वो पुलकित हो गई, क्योंकि उसके अंदर राम के प्रति बहुत ही अटूट स्नेह, बहुत श्रद्धा थी, वो प्यार की तड़प थी उस पिता के प्रति, परमात्मा के प्रति। लेकिन बताते हैं कि उसका जो पूर्व जन्म था सबरी का, वो पूर्व जन्म में एक राज्य की रानी थी। सारा सुख वैभव, राजमहल के सब कुछ होता है था तो भी वो मतलब ठीक था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं से परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा भावना थी। एक बार वो अपने राजा के साथ, अपने पति के साथ प्रयागराज गई। वहां उसने जब कुंभ मेला था तो देखा कि बहुत सारे संत महात्मा वहां इकट्ठे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तब उसने अपनी मन के भाव को राजा को बताया कि मैं भी यही चाहती हूं कि मैं ईश्वर की आराधना करूं, साधना करूं। तब राजा ने कहा कि ये तुम कितने ऊंच कुल की हो जा रहा है, ये तो सोचो, तुम रानी हो, महारानी हो, इन छोटे छोटे जो लोग हैं इनके साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता है तुमको। इस बात से वो इतना आहत हुई वो रानी, कि जो नदी थी, कौन सी नदी है, प्रयाग, त्रिवेणी नदी, उसके अंदर गई और अपने प्राण को त्याग दिया ईश्वर से ये कहते हुए कि हे ईश्वर, अगले जन्म में भल आप हमें कुरूप बनाना, सुंदर नहीं बनाना, भले आप मुझे उच्च कुल में जन्म नहीं देना, लेकिन ऐसा करना, ऐसा गरीब दुखियारी कुरूप बनाना ताकि मैं आपकी छत्र छाया का अनुभव करूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी साधना कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, तब वो नेक्स्ट जन्म में सबरी के रूप में जन्म लिया और फिर उसका इसका फल भी मिला। तो बाबा ने कहा है कि भले चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सेंटर पर रहते हैं चाहे घर पर रहते हैं चाहे कहां भी रहते हो, लेकिन अभी सबरी की तरह से पूर्व जन्म तो मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि समय कम है, हमें जीते जी मरना है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे जीते जी मरो, जीते जी मरेंगे मतलब कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करेंगे, अपने नया ब्राह्मण जीवन की स्मृति में आएंगे, तब भी आपका जीवन सार्थक होगा। हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो कितने न बाबा को पा करके सुख में शांति में चैन में जीवन जीने लगते हैं, तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि हम इस सुख में आकर के, इस शांति में आकर के, इस बेफिक्री में आकर के हम इतना ना निश्चिंत हो जाएं कि बाबा को जो हमें आदेश मिला है उसे भूल जाएं। बाबा का जो संदेश है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, जो अपना स्वदेश है, उसे ना भूल जाएं जीवन में चलते चलते, तो इस बात का हमें अटेंशन देना है। बाबा ने समर्पण की बहुत सारी गुहे बातें बताई हैं हम बच्चों के लिए। बाबा ने बताया है अपना हर एक श्वास, हर एक संकल्प, कर्म सब बाबा को अर्पण करना है। जितना हम संपूर्ण रूप से समर्पण होंगे उतनी हमारे अंदर संपूर्णता आएगी। हमें हमारे जीवन का, अपने मतलब जीवन में आने वाले सभी संबंधों का त्याग, संबंधों का समर्पण, सुख साधनों का समर्पण, तन मन धन सब कुछ समर्पण करना है। जब तक हम कोई भी साधन में लगे हुए हैं तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से माया का रूप ले लेती है। अगर हमें हमारे अंदर अभी भी प्रलोभन है, प्रलोभ है, वो आसक्ति है, वो लोभ है, तो कहीं ना कहीं हम प्रलोभन में आकर के वो जो प्रलोभन है हमें मर्यादा की लकीर के बाहर लेके चली जाती है। तो इसलिए बाबा ने हमें मतलब समर्पण की सारी विधियां बताई हैं जो आपसे हमने शेयर किया। ओम शांति।
मुझ पे नजर, एक तेरा संग हो।